بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
زہرا زیدی اور ساتھی ریڈیو تہران کے سبھی شروتاؤں کی سیوا میں سلام پرستت کرتے ہیں۔ شروتاؤں، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے۔ آج کے کارکرم میں آپ سورہ اسراء کی ساتویں، آٹھویں اور نویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے قاری سعید توسی سے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، یدی تم کوئی بھلائی کرو گے تو وہ اپنے لیے ہی کرو گے، اور یدی کوئی برائی کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے ہی کرو گے، تو جب دوسرا وچن پورا ہونے کو آئے گا تو ایک شکتیشالی گٹ آئے گا جس کے لوگ تمہارے چہروں کو برا بنا دیں گے اور مسجد الاقصی میں प्रविष्ट हो जाएंगे, जिस प्रकार से कि वे पहली बार प्रविष्ट हुए थे, और वे जिस वस्तु को भी अपने नियंत्रण में लेंगे उसे बड़ी कठोरता से तबाह कर देंगे। शायद तुम्हारा पालनहार तुम पर दया करे, और यदि तुम पलट आए तो हम भी पलट आएंगे, और हमने नरक को काफिरों के लिए एक कड़ा कारावास बनाया है। निश्चित रूप से यह कुरान सबसे सुदृढ़ राह की ओर मार्गदर्शन करता है, और भले कर्म करने वाले ईमान वालों को ये शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, आज सोमवार है, अप्रैल की 3, रमजान की 12 और फरवरदीन माह की 14 तारीख। कार्यक्रमों में आप विगत की ही भांति पहले विश्व समाचार सुनेंगे। विश्व समाचारों के बाद राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा। उसके उपरांत हम आपको पवित्र रमजान के संबंध में विशेष कार्यक्रम सुनवाएंगे। हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा वहाबियत और वास्तविकता। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति रईसी ने दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट करने का आह्वान किया है। सरकार का कहना है कि ईरानी सैन्य सलाहकारों की शहादत का जवाब जरूर दिया जाएगा। सऊदी अरब असद को अरब देशों के शिखर सम्मेलन में बुलाना चाहता है। अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। राष्ट्रपति रईसी ने कहा है कि मुस्लिम देशों के नेताओं को इस्लामी एकता के गठन के लिए प्रयास करने चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने यमन की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष को भेजे संदेश में इस्लामी एकता पर बल दिया। उन्होंने रमजान के पवित्र महीने को उपासना करने, आत्मनिर्माण करने और स्वयं के भीतर अच्छाइयां पैदा करने वाला महीना बताया। अपने संदेश में इब्राहिम रईसी ने कहा कि पवित्र रमजान के महीने में पवित्र कुरान की शिक्षाओं से लाभ उठाते हुए मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति रईसी का कहना था कि समस्त मुसलमानों को संयुक्त रूप में प्रयास करते हुए विश्व में इस्लाम के नाम को ऊंचा करना चाहिए। ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने टेलीफोन वार्ता में आने वाले दिनों में एक दूसरे से मुलाकात पर सहमति जताई है। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्रालय के सूचना विभाग के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहिया ने रविवार को सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों देशों के बीच संबंधों और पड़ोस की नीति विकसित करने के लिए ईरान के दृढ़ संकल्प का इसमें बल दिया गया। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने भी दोनों देशों के अधिकारियों के बीच निरंतर संचार और बैठक की आवश्यकता पर बल दिया। ईरान सरकार के प्रवक्ता ने सीरिया में 2 ईरानी सैन्य सलाहकारों की शहादत का उल्लेख करते हुए जोर दिया है कि आतंकवादी कार्रवाइयां अनुत्तरित नहीं रहेंगी। अली बहादुरी जहरूमी ने अपने ट्वीट अकाउंट पर लिखा है कि संकट के समय ज़ायोनी शासन और अन्य सरकारी आतंकवादियों की आदत सीमा के बाहर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना है, ताकि जनमत को डाइवर्ट किया जाए और अपनी आंतरिक समस्याओं की गहराई को स्पष्ट होने न दिया जाए। उधर इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि सीरिया पर इसराइल के हवाई हमले में शहीद होने वाले दो ईरानी सैन्य सलाहकारों का खून बर्बाद नहीं जाएगा। सीरिया की सेना ने होम शहर पर मारे जाने वाले कई इसराइली मिसाइलों को मार गिराया। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी साना के अनुसार ज़ायोनी मिसाइल हमले शनिवार और रविवार के बीच की रात में हुए, जिसके दौरान होम शहर और उसके उपनगरीय क्षेत्रों को निशाना बनाया गया, किंतु सीरिया की सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने फायर किए गए मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया और कई को मार गिराया। सऊदी अरब के अरब देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में सीरिया के राष्ट्रपति की उपस्थिति का बुलावे की आशंका सऊदी अरब की ओर से बढ़ती जा रही है। रॉयटर्स के अनुसार सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान आले सऊद आगामी सप्ताहों के दौरान दमिश्क की यात्रा पर जा रहे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान सऊदी अरब के विदेश मंत्री सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद को अरब देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में भाग लेने का निमंत्रण देंगे। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि एक दशक से अधिक का समय बीत जाने के बाद सऊदी अरब सीरिया से अपने कूटनीतिक संबंध बहाल करना चाहता है। यमन के खिलाफ जारी 8 साल के युद्ध में औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों में 167 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। यमन की नेशनल सॉल्वेशन सरकार के उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय ने रविवार को एक रिपोर्ट में बताया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी गठबंधन के हमलों में यमन के निजी क्षेत्रों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा और औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रों में होने वाला नुकसान 167 अरब डॉलर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने फैसला किया है कि वे मंगलवार को न्यायालय में सरेंडर कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि चाहे मानो या न मानो, मंगलवार को मैं न्यायालय जाऊंगा। इस प्रकार से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने सोमवार को इस बात की पुष्टि कर दी है कि मंगलवार को वे मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट में हाजिर होंगे। अब ट्रंप ऐसे पहले अमरीकी राष्ट्रपति बन जाएंगे जिन पर आपराधिक मामला चलाया जाएगा। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार के दौरान एक पोर्न स्टार को चुप रहने के लिए $130,000 दिए थे। मैनहट्टन ग्रैंड ज्यूरी ने इसी केस में ट्रंप के विरुद्ध अभियोग चलाने का फैसला किया है, हालांकि ट्रंप ने इन आरोपों को नकार दिया है। यूक्रेन भेजे जाने वाले हथियार तस्करी होकर ब्रिटेन पहुंच रहे हैं। ब्रिटेन की बैलिस्टिक इन्फॉर्मेशन सर्विस नामक संस्था के प्रमुख ने बताया है कि यूक्रेन युद्ध में प्रयोग होने वाले हथियारों को कुछ आपराधिक गुट ब्रिटेन ला रहे हैं, जिसके परिणाम में ब्रिटेन में खौफनाक अपराध की दर में तेजी से वृद्धि हो रही है। पॉल जेम्स के अनुसार इनमें से ज्यादातर वे हथियार हैं जो कीव ने यूक्रेन के आम नागरिकों को दिए थे। ज्ञात रहे कि ब्रिटिश पत्रिका ने फरवरी में जारी होने वाली एक रिपोर्ट में बताया था कि पिछले एक साल के दौरान लंदन में गन अपराध की दर में 2500% की वृद्धि हुई है। 6 देशों ने तेल उत्पादन में कटौती का फैसला कर लिया है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब इमारात, कुवैत, ओमान, इराक और अल्जीरिया ने स्वेच्छा से अपने तेल उत्पादन के कटौती करने का फैसला किया है। स्पुतनिक समाचार एजेंसी के अनुसार सऊदी अरब के पेट्रोलियम मंत्री के एक आधिकारिक सूत्र ने बताया है कि ये देश ओपेक के 2 सदस्य देशों के साथ मिलकर मई 2023 तक प्रतिदिन 5 लाख बैरल की कटौती करने जा रहा है। इस सऊदी सूत्र का कहना है कि ये कटौती उस कटौती से अलग है जिसका फैसला 5 अक्टूबर को ओपेक की 33वीं बैठक में लिया गया था। उनका कहना था कि यह फैसला तेल बाजार का समर्थन करने के उद्देश्य से लिया गया है। इसी बीच यूएई के ऊर्जा मंत्री ने बताया है कि उनका देश अगले महीने से इस वर्ष के अंत तक स्वेच्छा से अपने तेल उत्पादन में 1,44,000 बैरल प्रतिदिन की कटौती करेगा। सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमारात की ही भांति अपने तेल उत्पादन में कटौती करने की घोषणा इराक, कुवैत, ओमान और अल्जीरिया ने भी की है। लेबनान के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के लिए कतर का एक शिष्टमंडल बेरूत पहुंचा है। अल अहद समाचार एजेंसी के अनुसार कतर के विदेश उपमंत्री के नेतृत्व में इस देश का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को लेबनान की राजधानी बेरूत पहुंचा। मोहम्मद अब्दुल अजीज अल खलीफी के नेतृत्व में ये शिष्टमंडल लेबनान के वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श करेगा। बताया गया है कि कतर का शिष्टमंडल लेबनान के जिन नेताओं से वार्ता करेगा उनमें वहां के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह के नेता भी शामिल होंगे। तालिबान का कहना है कि कुछ देश दाइश का डर दिखाकर तालिबान पर दबाव बनाना चाहते हैं। तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि कुछ देशों द्वारा अफगानिस्तान में दाइश की गतिविधियों में वृद्धि पर चिंता केवल दुष्प्रचारों का ही एक हिस्सा है। उन्होंने किसी भी देश का नाम लिए बिना कहा कि ये काम करके तालिबान पर अधिक से अधिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जर्मनी की सांसद ने कहा है कि अमरीकी सैनिकों की घर वापसी का समय अब निकट आ चुका है। उन्होंने कहा है कि 78 वर्षों के बाद अब समय आ गया है कि अमरीकी सैनिक अपने देश वापस चले जाएं। उन्होंने कहा कि जर्मनी के सारे ही घटक वर्षों पहले इस देश को छोड़कर जा चुके हैं, किंतु अमरीका की उपस्थिति अब तक बाकी है। उनका कहना था कि अमरीका के परमाणु हथियार भी जर्मनी में नहीं होने चाहिए। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहंदी का सलाम स्वीकार कीजिए। ईरान के विदेश मंत्री ने अपने सऊदी समकक्ष से टेलीफोनिक बातचीत में दोनों देशों के बीच संबंधों की सकारात्मक प्रतिक्रिया पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की और दोनों देशों के बीच संबंधों और पड़ोस की नीति विकसित करने के लिए ईरान के दृढ़ संकल्प पर बल दिया। तुर्क राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने विपक्षी पार्टी पीपल्स रिपब्लिक के नेता कमाल खलीज दार ओग्लू के साथ अंकारा में अमेरिकी राजदूत की मुलाकात की आलोचना की है। अर्दोगान ने जेफ फ्लिक की ओग्लू के साथ मुलाकात को शर्मनाक करार देते हुए कहा है कि अमेरिकी राजदूत को अपनी सीमा से बाहर नहीं निकलना चाहिए और अपने राजनयिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरनेम से जुड़े मामले में आज सूरत की एक उच्च अदालत में याचिका दायर की। इस याचिका में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा जाने का आग्रह किया गया है। ईरान के विदेश मंत्री ने अपने सऊदी समकक्ष से टेलीफोनिक बातचीत में दोनों देशों के बीच संबंधों की सकारात्मक प्रतिक्रिया पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की और दोनों देशों के बीच संबंधों और पड़ोस की नीति विकसित करने के लिए ईरान के दृढ़ संकल्प पर बल दिया। बीजिंग में ईरान और सऊदी अरब के बीच बातचीत के दौरान दोनों देश 10 मार्च को 7 साल बाद राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए थे। दोनों देशों के बीच होने वाले समझौते के अनुसार ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्री एक दूसरे से मुलाकात में राजदूतों के आदान प्रदान और दूतावासों को फिर से खोलने के साथ संबंधों को फिर से आरंभ करने के लिए अन्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की बुनियाद तैयार करेंगे। समीक्षा पेश करें साथी अख्तर अब्बास।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से टेलीफोनी बातचीत में दोनों देशों के बीच संबंधों की सकारात्मक प्रक्रिया पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की और दोनों देशों के बीच संबंधों और पड़ोस की नीति विकसित करने के लिए ईरान के दृढ़ संकल्प पर बल दिया। बीजिंग में ईरान और सऊदी अरब के बीच बातचीत के दौरान दोनों देश 10 मार्च को 7 साल बाद राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए थे। दोनों देशों के बीच होने वाले समझौते के अनुसार ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्री एक दूसरे से मुलाकात में राजदूतों के आदान प्रदान और दूतावासों को फिर से खोलने के साथ संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए अन्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की बुनियाद तैयार करेंगे। इस संबंध में सऊदी नरेश सलमान बिन अब्दुल अजीज ने ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी को सऊदी अरब की यात्रा के लिए आमंत्रित किया और इसके जवाब में राष्ट्रपति रईसी ने किंग सलमान को तेहरान आने का न्योता दिया। इन व्यवहारों और द्विपक्षीय वार्ताओं से पता चलता है कि रियाज और तेहरान के अधिकारियों ने संबंधों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं और दोनों देशों के बीच संबंधों के महत्व से दोनों पक्ष और क्षेत्र के लोग पूरी तरह से अवगत हैं। पिछले महीने के दौरान दोनों देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण विषयों में से एक विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और बिन फरहान के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक थी। आज की बातचीत में दोनों पक्षों ने आने वाले दिनों में मुलाकात पर सहमति जताई है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की पहली द्विपक्षीय बैठक के आयोजन से तेहरान और रियाज में एक दूसरे के दूतावास खुल सकते हैं। पिछले 7 वर्षों में सऊदी अरब और ईरान के बीच संबंधों के खराब होने के परिणाम स्वरूप दोनों देशों को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इन संबंधों के विरोधियों विशेष रूप से ज़ायनी शासन ने पिछले 7 वर्षों में ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव और संघर्ष को हवा देने और तेहरान के संबंध में रियाज की विदेश नीति के खर्च को बढ़ाने की कोशिश की। इसी आधार पर दैनिक शासन ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों की बहाली के समझौते से नाराज है। बहरहाल विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और फैसल बिन फरहान के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत से पता चलता है कि ईरान और सऊदी अरब ने क्षेत्र में अपनी अपनी स्थिति को समझकर द्विपक्षीय संबंधों के लिए सही रास्ता अपनाया है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
तुर्क राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने विपक्षी पार्टी पीपल्स रिपब्लिक के नेता कमाल खलीच दार ओग्लू के साथ अंकारा में अमेरिकी राजदूत की मुलाकात की आलोचना की है। अर्दोगान ने जेफ फ्लिक की ओग्लू के साथ मुलाकात को शर्मनाक करार देते हुए कहा है कि अमेरिकी राजदूत को अपनी सीमा से बाहर नहीं निकलना चाहिए और अपने राजनयिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने किसी देश के आंतरिक मामलों और विशेषकर चुनाव में हस्तक्षेप का प्रयास किया हो। समीक्षा पेश करें साथ ही मिसम अब्बास।
तुर्क राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने विपक्षी पार्टी पीपल्स रिपब्लिक के नेता کمال علیشدار اوغلو کے ساتھ انکارا میں امریکی راجدوت کی ملاقات کی آلوچنا کی ہے. اردوغان نے جیف لپکی اوغلو کے ساتھ ملاقات کو شرمناک بتاتے ہوئے کہا، امریکی راجدوت کو اپنی حد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اور اپنے راجنیتک کرتویوں کا پالن کرنا چاہیے. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ جب امریکہ نے کسی دیش کے آنترک معاملوں اور خاص طور پر چناؤں میں ہستکشیپ کا پریاس کیا ہو. امریکہ ترکیے میں ہونے والے چناؤں میں بھی ہستکشیپ کرتا رہا ہے. دراصل واشنگٹن اپنے ہتوں کو سادھنے کے لیے ترکیے کے معاملوں میں دخل دیتا رہا ہے. امریکہ کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس دیش کے آنترک معاملوں سے سیدھے طور پر اس کے ہت جڑے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے واشنگٹن کا پریاس رہتا ہے کہ انکارا میں پشچم کی اور جھکاؤ رکھنے والا ہی نیتا ستہ سنبھالے. واسطو میں ترکیے کے آنترک معاملوں میں امریکی ادھیکاریوں کے ہستکشیپ کا ایک لمبا اتہاس رہا ہے. ادھارن کے طور پر 2018 میں ترکیے کے آنترک معاملوں کو لے کر امریکی ودیش وبھاگ کے تتکالین پروکتا سہیت پشچمی ادھیکاریوں دوارا کی گئی ٹپڑیوں کا الیکھ کیا جا سکتا ہے. 2018 کے چناؤں کے دوران امریکی ودیش منترالیہ کے پروکتا نے ترکیے میں سمے سے پہلے چناؤ کرانے کی گھوشنا کے بارے میں کہا تھا، امریکی سرکار ترکیے میں سوتنتر پاردرشی اور نشپکش چناؤ کرانے کو لے کر چنتت ہے. ترکیے کے ودیش منترالیہ نے امریکی ادھیکاریوں کے بیانوں کے جواب میں واشنگٹن پر آروپ لگایا تھا کہ وہ اس کے آنترک معاملوں میں ہستکشیپ کرنے کا پریاس کر رہا ہے. اس سمے جب ترکیے کے راشٹرپتی اور سنسدیہ چناؤں میں 2 مہینے سے بھی کم سمے بچا ہے، امریکی راجنیتک وپکشی نیتاؤں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں. ہمیں اس تتھیہ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اردوغان سرکار نے پاردرشی سوتنتر نیتیاں اپنا کر ترکیے میں امریکی اپستھتی کو ادھک خرچیلا بنا دیا ہے. اسی وجہ سے وائٹ ہاؤس چناؤ میں اردوغان کی ہار کی آشا رکھتا ہے. ترکیے کے معاملوں کے ایک وشلیشک رحمان قہرمان پور کا اس سندر میں کہنا ہے، 2023 ترکیے کے لیے ایک نرنائک سال ہے، اس لیے کہ پشچم کو اس سال ہونے والے چناؤں میں بڑی امید ہے کہ اس چناؤ میں اردوغان ہار جائیں گے. 2 دشک پہلے تک ترکیے کو بڑی حد تک یوروپ اور پشچم پر آشرت دیش کے طور پر دیکھا جاتا تھا. اس کے علاوہ ناٹو میں ترکیے کے پاس دوسری سب سے بڑی سینا ہے. اسی درشٹی کون سے پشچم کے ساتھ ترکیے کے سمبندوں کو پریبھاشت کیا گیا تھا، لیکن جب سے اردوغان نے ستہ سنبھالی ہے انہوں نے ترکیے کی سوتنترتا پر ادھک دھیان دیا ہے.
کانگریس پارٹی کے نیتا اور سانسد راہل گاندھی نے مودی سرنیم سے جڑے معاملے میں آج سورت کی ایک اچھ عدالت میں یاچکا دائر کی. اس یاچکا میں نچلی عدالت کے فیصلے پر روک لگا جانے کا آگرہ کیا گیا ہے. جس میں راہل گاندھی نے یاچکا دائر کی اس سمے ان کے ساتھ 3 راجیوں کے مکھیہ منتری اور کانگریس کی مہا سچیو پرینکا گاندھی بھی تھیں.
کانگریسی نیتا راہل گاندھی نے مودی سرنیم سے جڑے مان ہانی معاملے میں عدالت دوارا سنائے گئے 2 سال کی سزا کے خلاف آج سورت کی ایک اچ عدالت میں یاچیکا دائر کی، جس میں نچلی عدالت کے فیصلے پر روک لگانے کا آگرہ کیا گیا. راہل گاندھی کے ساتھ کانگریس کی مہا سچیو پرینکا گاندھی اور 3 راجیوں کے مکھیہ منتری بھی شامل تھے جہاں کانگریس ستہ میں ہے. کانگریس سمرتھکوں اور کارکرتاؤں کا ایک ہجوم راہل گاندھی کے ساتھ تھا. راہل گاندھی کو سورت کی سیشن کورٹ سے ضمانت مل گئی ہے اور اب اس معاملے کی اگلی سنوائی 13 اپریل کو ہوگی. سورت کی نچلی عدالت نے راہل گاندھی کو اس معاملے میں 2 سال کے کارواس کی سزا سنائی تھی اور اس فیصلے کو چنوتی دینے کے لیے 30 دنوں کی مہلت دی تھی. نچلی عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد راہل گاندھی کی سنسد سدستا رد کر دی گئی تھی. بھاجپا اسے قانون کے انترگت کی گئی کاروائی بتاتی ہے، جبکہ کانگریس سہیت وپکشی دلوں نے اسے جلد بازی میں کی گئی کاروائی بتایا ہے، جس کا ادیش راہل گاندھی کو سنسد میں سچ بولنے سے روکنا ہے. جب سے سنسد کی کاروائی آرمبھ ہوئی ہے اڈانی سموہ پر لگائے گئے بھرشٹاچار کے آروپوں کی جے پی سی دوارا جانچ کرانے کی مانگ کو لے کر وپکشی دل سنسد کے دونوں صدروں میں ہنگامہ کر رہے ہیں اور ستا پکش بھی راہل گاندھی سے لندن میں دیے گئے بیان پر راشٹر سے معافی مانگنے کی مانگ پر اڈگ ہے. مانہانی کے مقدمے میں راہل گاندھی کی سنسدیہ سدستا سماپت کیے جانے کے بعد سبھی وپکشی سانسد काला वस्त्र पहनकर संसद में आ रहे हैं और जेपीसी की मांग दोहरा रहे हैं। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी इसी मुद्दे को लेकर महिला कांग्रेस मोर्चे का विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसे लोकतंत्र बचाओ रैली का नाम दिया गया था। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
तो श्रोताओ, शमशाद काजमी की इसी रिपोर्ट के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम अभी आपने सुना राजनैतिक चर्चा। इस कार्यक्रम के बारे में आप अपने विचार हमें जरूर लिखिएगा। अपने विचारों को आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पवित्र रमजान का महीना चल रहा है। आज रमजान की 12 तारीख है। पेश है इस संबंध में एक विशेष कार्यक्रम।
ईश्वरीय आतिथ्य।
दोस्तों, पवित्र रमजान पर विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं अख्तर रिजवी और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, पवित्र रमजान का मुबारक और बरकतों भरा महीना चल रहा है। इस समय महानीश्वर की रहमतों का दरवाजा खुला हुआ है। इन दिनों हमारी दुआएं और इबादत अल्लाह की बारगाह में अन्य दिनों के मुकाबले में कहीं अधिक स्वीकार्य होती है। रमजान आत्मा को शुद्ध करने और खुद को पापों से दूर रखने का महीना है। रमजान का पवित्र महीना उन लोगों के लिए अधिक खुशियों से भरा है जिनके दिल पाक हैं। यह ऐसा महीना है कि जो इंसान की आत्मा को हर तरह की गंदगी से पवित्र करता है। यह ऐसा महीना है कि जिसमें बंदा अपने दिल की बात ईश्वर से बयान करता है और अपनी परिपूर्णता की प्राप्ति की दुआ करता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम पवित्र महीने रमजान के आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, उससे पहले 12वें दिन की दुआ और उसका अनुवाद सुनते हैं।
اللهم زيني فيه بالستر والعفاف واسترني فيه بلباس الغنوع والكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وأؤمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين।
हे ईश्वर, इस दिन मुझे आवरण तथा आत्मा की पवित्रता के गहने से सुशोभित कर दे। मुझे संतुष्टि का वस्त्र पहना तथा न्याय व समानता का सामर्थ्य प्रदान कर। और हे ईश्वर से डरने वालों की शरण, मुझे हर उस बात से सुरक्षित रख कि जो मेरे लिए भय और डर का कारण हो।
दोस्तों, अल्लाह ने हमें जो भी नेमतें दी हैं, चाहे वह छोटी से छोटी हो या फिर बड़ी से बड़ी, वह नेमतें चाहे भौतिक हो या फिर आध्यात्मिक, ये सारी अनुकंपाएं ईश्वर द्वारा हमारे ऊपर की गई उसकी कृपा है जो हमारे इतने करीब होती है कि हम अक्सर उससे अनजान होते हैं। इन सब में जो सबसे बड़ी नेमत, वह खुद अल्लाह है। सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने हाजिर होना, जिसके हाथों में सब कुछ है, यह उसकी हम पर महान कृपा है, जिसे हम में से अधिकांश लोग ठीक से महसूस नहीं करते हैं। अल्लाह पवित्र कुरान के सूरे काफ की आयत नंबर 16 में कह रहा है कि हमने मनुष्य को पैदा किया है और हम जानते हैं जो बातें उसके जी में आती है, और हम उससे उसकी गर्दन की रग से भी निकट हैं। ईश्वर हमेशा और हर जगह मौजूद है, हमारी आवाजों को सुनता है, हमारे दिलों के राजों को जानता है और हमारी नीयत के बारे में भी अच्छी तरह से जानता है। लेकिन हमारे पास हमेशा उसके वजूद को समझने की शक्ति नहीं होती। हमारे पाप और गलत काम, हमारे बुरे इरादे और नैतिकता हमें अल्लाह के वजूद और उसकी उपस्थिति को भूलने का कारण बनते हैं। हमारे बुरे कर्म ही उस मोटे पर्दे की तरह हैं जो हमारे दिल की खिड़की पर गिरते हैं और हमें दुनिया की सच्चाई देखने से वंचित करते हैं।
दोस्तों, अल्लाह हर जगह मौजूद है। जब हम सांस ले रहे होते हैं तब भी, और जब हम चल रहे होते हैं तब भी वो हमारे साथ होता है। हम जो रातों को सोते हैं और सुबह उठते हैं, ये अल्लाह ही है जो हमारी मदद करता है और हमें दोबारा जीवन प्रदान करता है। ये हम हैं कि कभी मौजूद होते हैं तो कभी गायब हो जाते हैं। हमारा वजूद ही उसकी कृपा है। इसीलिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने अपने आप को पहचान लिया, उसने अपने पालनहार को पहचान लिया। इसका अर्थ ये है कि जिसने अपने वजूद को समझ लिया, वो अल्लाह के वजूद से फिर भी कभी इनकार नहीं करेगा, और जिस भी इंसान को जब भी ईश्वर के शाश्वत वजूद को समझने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, वो फिर अपने आप को अल्लाह के सामने पेश होने से नहीं रोक पाएगा और उसकी उपासना में लीन हो जाएगा। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमने ईश्वर को भुला दिया तो वो भी हमें भुला देगा, क्योंकि हमारी अनुपस्थिति का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर हमारी परिस्थितियों और कार्यों से अनजान हैं, बल्कि वो हमारी एक एक सांस के बारे में जानता है। लेकिन हमने क्योंकि उसे भुला रखा है, इसीलिए उसकी उपस्थिति से अनजान है।
इसीलिए पवित्र रमजान का महीना एक अवसर बनकर हम इंसानों के लिए आता है, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें और अपने ईश्वर के वजूद को समझ सकें। यह वह महीना है जिसमें इंसान महान ईश्वर से अधिक निकट हो सकता है। इंसान का दिल हर दूसरे समय से अधिक इस महीने महान ईश्वर का सामीप्य प्राप्त करने के लिए तैयार होता है, और शैतान हर दूसरे समय से अधिक मोमिनों और महान ईश्वर के बंदों से दूर होता है। अतः इस महीने में महान ईश्वर और उसके बंदों के मध्य संपर्क की संभावना हर दूसरे महीने से अधिक है। इस आधार पर पवित्र रमजान महीने में दुआओं के कबूल होने की संभावनाएं अधिक होती है। यह वह महीना है जिसके बारे में पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है, रमजान वह महीना है जिसमें तुम्हें ईश्वरीय मेहमानी के लिए आमंत्रित किया गया है और तुम्हें इस महीने में प्रतिष्ठित लोगों में करार दिया गया है। इस महीने में तुम्हारी सांसों की तस्बीह अर्थात ईश्वर गुणगान करार दिया गया है। तुम्हारी नींद को उपासना करार दिया गया है। इस महीने में तुम्हारे कार्यों को कबूल किया गया है। इस महीने में तुम्हारी दुआएं कबूल होती है। इस महीने में नमाज के समय अपने हाथों को दुआओं के लिए ईश्वर की ओर उठाओ। इस पवित्र महीने में ईश्वर अपने बंदों को कृपा दृष्टि से देखता है। अगर उसे बुलाया जाता है तो वह जवाब देता है, अगर उससे मांगा जाता है तो वह देता है।
रमजान का महीना ईश्वरीय कृपा के द्वार खुलने का महीना है। रमजान का महीना मांगने और स्वीकार करने का महीना है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रमजान की पहली रात को आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और रमजान महीने की अंतिम रात तक बंद नहीं होते। यानी ईश्वर और उसके बंदों के दौरान जो दूरियां हैं, ईश्वर की ओर से उसे ख़त्म कर दी जाती हैं और ईश्वर से भौतिक एवं आध्यात्मिक जो चीज़ भी कहीं जाती है वो उस तक पहुंचती है। रमज़ान के पवित्र महीने को महानता, प्रतिष्ठा और अध्यात्म की दृष्टि से सबसे अच्छा महीना कहा जाता है। महान ईश्वर पवित्र कुरान के सूरह बकरा की आयत नंबर 185 के एक भाग में इस महीने की विशेषता के बारे में कहता है, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। ये लोगों के लिए मार्गदर्शन है। ये सत्य को असत्य से अलग करने वाला है। महान ईश्वर ने इस महीने में जो नेमतें व अनुकंपाएं प्रदान की हैं उससे इंसानों के लिए आत्मनिरीक्षण व स्वयं को पवित्र बनाना सरल हो गया है। इस महीने में इस प्रकार की विशेषता का होना इस बात का कारण बनता है कि इंसान का ध्यान महान ईश्वर की ओर अधिक जाता है और उनकी दुआएं कबूल होने के अधिक निकट होती हैं। इस आधार पर हम देखते हैं कि महान ईश्वर पवित्र कुरान के सूरह बकरा की 183 से 185 तक की आयतों में रमज़ान के रोज़े की अनिवार्यता और कुछ धार्मिक आदेशों को बयान करता है और इसी सूरह की आयत नंबर 186 में कहता है, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो कह दीजिए कि मैं समीप हूँ, जब मुझे पुकारा जाता है तो मैं पुकारने वालों का जवाब देता हूँ, तो उन्हें चाहिए कि मेरे आदेशों का पालन करें और मुझ पर ईमान रखें ताकि उनका मार्गदर्शन किया जाए।
यहाँ ये बात ज़रूर याद रखिए कि अगर पहली बार में दुआ कबूल नहीं हुई तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संभव है कि महान ईश्वर ने किसी रहस्य की वजह से दुआ को कबूल करने को विलंबित कर दिया है। तो अगर इंसान दोबारा दुआ करता है वह अधिक ईश्वरीय कृपा व दया का पात्र बनता है। अगर पहली बार में महान ईश्वर इंसान की दुआ को कबूल कर ले तो वह दूसरी बार महान ईश्वर से दुआ नहीं करेगा, और जब वह दुआ नहीं करेगा तो अधिक दया व कृपा का पात्र नहीं बनेगा। जबकि महान ईश्वर ये चाहता है कि उसका बंदा अधिक कृपा व दया का पात्र बने। कभी ऐसा होता है कि इंसान अपनी आदत के अनुसार दुआ करता है। ऐसी स्थिति में दुआ करने वाले इंसान के अंदर कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, किंतु कुछ अवसरों पर, विशेषकर परेशानी के समय, न केवल इंसान अपनी जबान से दुआ करता है बल्कि दिल और उसके शरीर के दूसरे अंग भी महान ईश्वर से दुआ करते हैं। ऐसी हालत में इंसान के अंदर परिवर्तन उत्पन्न होता है और इंसान महान ईश्वर को उसके विशेष नामों की सौगंध देता है और वह बार बार दुआ करता है, और यह वह चीज है जिसे महान ईश्वर चाहता है।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अभी आपने हमारा विशेष कार्यक्रम सुना और अब पेश है इस सभा का अंतिम कार्यक्रम, वहाबियत और वास्तविकता।
वहाबियत और वास्तविकता।
दोस्तों कार्यक्रम वहाबियत और वास्तविकता की दूसरी कड़ी के साथ हाजिर हैं। कायम रिजवी और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
पवित्र कुरान में मतभेद फैलाने को हत्या करने से भी बुरा बताया गया है। ये मतभेद ही हैं जो लोगों को बहुत सी अच्छाइयों से वंचित कर देते हैं और उसके विकास को रोक देते हैं। इस्लाम का मानना है कि मनुष्य को स्वतंत्र पैदा किया गया है और उसको अपनी स्वतंत्रता किसी को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों पिछले कार्यक्रम में हमने आपको बताया था कि खवारिज की कार्रवाइयाँ और उनकी विचारधारा इतिहास में अंकित हो गई है। ये भ्रष्ट विचारधारा समय समय पर इस्लामी जगत में उभरती हुई दिखाई दी। इतिहास में जब जब खवारिज की विचारधारा ने सिर उठाया, इससे इस्लाम के शत्रुओं को बड़ी खुशी हुई।
इस्लाम के शत्रु इस भ्रष्ट विचारधारा को हमेशा के लिए जीवित रखने के प्रयास करते आ रहे हैं। इस काम से उनका मुख्य लक्ष्य इस्लाम को नष्ट करना है। इब्ने तैमिया की मौत के बाद ऐसा लगा जैसे खवारिज की भ्रष्ट विचारधारा समाप्त सी हो गई है। इब्ने तैमिया की मौत के लगभग 4 शताब्दियों के बाद 1703 ईस्वी में नजद में उयैना नामक गांव में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नामक एक बच्चा पैदा हुआ। जब अब्दुल वहाब पैदा हुआ तो उस समय किसी ने ये सोचा तक नहीं था कि ये व्यक्ति आगे चलकर वास्तविक इस्लाम को कितना नुकसान पहुँचाएगा।
मुसलमानों के दूसरे खलीफा के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक कथन नकल किया है जो सही बुखारी सहित मुसलमानों की अन्य विश्वसनीय किताबों में भी दर्ज है। इस हदीस में पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि हे ईश्वर, शाम और यमन के क्षेत्रों में हमारे लिए बरकत वाला बना। जब पैगंबर इस्लाम ने यह दुआ की तो वहाँ उपस्थित लोगों ने आपसे कहा कि आप नस्त के लिए भी ऐसी ही दुआ कीजिए। पैगंबर इस्लाम ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। बाद में उन्होंने कहा कि ये दंगों, उपद्रवों और भूकंपों का स्थान है, यहाँ से शैतान के सिंह जाहिर होंगे।
कुछ व्याख्याकारों का कहना है कि पैगंबर इस्लाम के इस कथन में शैतानों के सींग से तात्पर्य शैतान के अनुयायी हैं। इब्ने तैमिया की विचारधारा से प्रभावित मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने बसरे में ब्रिटेन के जासूस हेम्फेर से मुलाकात के बाद ये फैसला लिया था कि इस्लाम की कुरूतियों को पाक करने के लिए उसको एक नए पंथ को जन्म देना होगा। उसका यह भी मानना था कि मैं एक नए पंथ की नींव डालकर इस्लाम में सुधार करूंगा, क्योंकि हेम्फेर ने बताया था कि स्वप्न में हजरत मोहम्मद ने अब्दुल वहाब की सराहना की थी। एक नए पंथ की नींव डालने के उद्देश्य से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने नजद का रुख किया। सबसे पहले उसने अपने जन्म स्थल ऐना में अपने विचारों का प्रचार करना आरम्भ कर दिया, क्योंकि उसकी बातें और उसके भाषण बहुत ही अमानवीय और रूखे होते थे, इसलिए वहाँ के लोगों ने उसको गांव से बाहर निकाल दिया।
जब अपनी मातृभूमि में दाल गलती हुई नहीं दिखाई दी तो फिर अब्दुल वहाब दरैया गया। दरैया रियास के पश्चिमोत्तर में स्थित एक क्षेत्र था। यहाँ पर उसकी मुलाकात ब्रिटेन के जासूस हेम्फेर से फिर से हुई, जिसने वहाँ पर अब्दुल वहाब की शेख से मुलाकात करवाई। शेख दरिये अर्थात वहाँ के शासक सन 1744 ईस्वी में आले सऊद खानदान अर्थात दरिये के शासक और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के बीच दोस्ती हुई। इसी दोस्ती से वहाबिया नामक एक नए पंथ का आरंभ हुआ।
शेख दरिये और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने मिलकर पहले एक छोटी सी सेना बनाई। सैनिकों की ये छोटी सी टुकड़ी बहुत ही हिंसक और अत्याचारी थी। बहुत ही कम समय में सेना के अत्याचारों का चर्चा हर ओर फैलने लगा। लोग इससे भयभीत रहते थे। शेख दरिये और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के गठबंधन से मिलकर बनने वाली ये सेना उस समय के अरब जगत के लिए बहुत ही गंभीर चुनौती में बदल गई थी। बहुत ही कम समय में इस सेना ने दरिये के निकटवर्ती क्षेत्रों पर हमले करके वहां पर खूब लूटपाट की। इस प्रकार से शेख दरिये और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के गठबंधन से मिलकर बनने वाली इस सेना ने लूट से बहुत ज्यादा माल बना लिया था। ये सारा माल उन मुसलमानों का था जो मस्जिदों में नमाजें पढ़ते थे और रोजे रखते थे। उन्हीं मुसलमानों पर अब्दुल वहाब ने काफिर का ठप्पा भी लगा दिया था।
इतिहासकारों का कहना है कि सेना ने इतनी अधिक लूटपाट की थी कि दरिया के रहने वालों के पास इतना अधिक धन आ गया था जिसका उल्लेख करना कोई आसान काम नहीं था। काफ़ी पैसा इकट्ठा होने और शक्ति आ जाने के बाद शेख दरिये और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के गठबंधन ने 21 अप्रैल सन 1802 को इराक के पवित्र नगर करबला पर हमला कर दिया। लगभग 12,000 वहाबियों ने यह हमला शुरू किया था। इस हमले में वहाबियों ने 4,000 से अधिक लोगों का जनसंहार किया। क्योंकि वहाबी स्वयं को ही मुसलमान मानते हैं, इसलिए उन्होंने केवल शिया मुसलमानों की ही हत्याएं नहीं की, बल्कि सुन्नी मुसलमानों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। करबला पर हमला करने के एक साल के बाद वहाबियों ने ताइफ पर हमला किया। उन्होंने माओं की गोदों में बच्चों को काट दिया और बहुत से कुरान की कारियों की हत्याएं की।
वहाबियों ने ताइफ में मस्जिदों पर हमले किए और सही बुखारी और इसी प्रकार की कई अन्य विश्वसनीय पुस्तकों को आग लगा दी, जिसकी जद में पवित्र कुरान भी आया। सऊदी अरब के वर्तमान नगर ताइफ पर हमला करके उसे नष्ट करने के बाद वहाबियों ने मक्के का रुख किया। वहाबियों ने मक्के के धर्मगुरुओं को एक पत्र भेजकर उनसे अपनी विचारधारा को मनवाने की धमकी दी। सुन्नी मुसलमानों के चारों पंथों अर्थात हनफी, मालिकी, शाफेई और हम्बली के धर्मगुरुओं ने वहाबियों की बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने वहाबियों के विरुद्ध जिहाद का आदेश जारी किया। सन 1219 हिजरी कमरी में वहाबियों ने मक्के को चारों ओर से घेर लिया। जब उन्होंने इस पवित्र नगर के चारों ओर से घेर लिया तो फिर वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें पहुँचने में परेशानियाँ आने लगीं। खाद्य पदार्थों की कमी के कारण लोग भूखों मरने लगे।
बताते हैं कि खाने पीने के लिए कुछ न होने के कारण मक्के में भूखमरी फैल गई और वहाँ सड़कें लाशों से पट गईं। ये भी कहा जाता है कि वहाबियों द्वारा पैदा की गई भूखमरी के कारण मक्का नगर की जनसंख्या इतनी कम हो गई थी कि नमाज के वक्त खाने काबा में पहली सफ भर नहीं पाती थी। लंबे समय तक वहाबियों के रक्तपात से इस्लामी जगत में नफरत फैलती जा रही थी। जब बात बहुत बढ़ गई तो तत्कालीन उस्मानी खलीफा अब्दुल हमीद द्वितीय ने आदेश जारी करके सऊदी वहाबी परिवार को सबक सिखाने के लिए मिस्र की सेना को सऊदी अरब भेज दिया।
मिस्र के शासक के पुत्र इब्राहिम पाशा के नेतृत्व में मिस्र की सेना ने सन 1818 में हमला करके सऊदी वहाबी सेना को नाकों चने चबवा दिए। उन्होंने दरिये को तहस नहस कर दिया। उस काल में वहाबी प्रचारक अब्दुल्ला आले सऊद और उसके दो अनुयायियों को गिरफ्तार करके मिस्र भेज दिया गया। उनको काहिरा में बंदी बनाकर रखा गया। हालांकि इससे वहाबियों की हरकतें समाप्त नहीं हुई। तुर्की में अब्दुल्ला आले सऊद को फांसी दिए जाने के बाद वहाबी मुसलमानों को अपने शत्रु की नज़र से देखने लगे। अब ये लोग ब्रिटेन और पश्चिम को अपने साथी और सहायक के रूप में मानने लगे थे।
इसी बीच तुर्की में फांसी पर चढ़ाए गए अब्दुल्ला आले सऊद के बेटों ने बाद में रियाज में बहुत सीमित पैमाने पर सरकार बनाने में सफलता हासिल की। آل سعود پریوار کے لوگوں کی آپسی رسا کشی اور شطر میں حکومت عثمانی کی پکڑ کے کارن وہاں بھی ایک ویاپک ایوم سشکت سرکار بنانے میں وفل رہے۔ عبداللہ آل سعود کا ایک بیٹا فیصل بن ترکی مصر میں بندی تھا۔ سن 1843 میں وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور سیدھا ریاض آ کر رک گیا۔ جس کال میں فیصل بن ترکی ریاض پہنچا، یہ وہی زمانہ تھا جب مدھیہ پورو پر اپنی پکڑ مضبوط کرنے کے لیے برٹین طرح طرح سے ہتھ کنڈے اپنا رہا تھا۔
مدھیہ پورو میں ورچسواد پھیلانے کے لیے برٹین کے پاس فیصل بن ترکی بہت اچھا وکلپ بن گیا تھا۔ دونوں ہی ستا کے بھوکے تھے۔ فیصل بن ترکی نے ریاض میں کسی سیما تک اپنی ستا کو مضبوط کر لیا تھا۔ اب اس نے برٹین کے ساتھ وارتا کا کام شروع کر دیا۔ جب دونوں پکشوں میں بات چیت کا دور آگے بڑھا تو برٹین نے وہابیوں کے ساتھ سمجھوتے کے لیے 1865 میں جنرل لوئس پیلی کو ریاض بھیجا۔ بعد میں فیصل بن ترکی نے برٹین کے ساتھ مترتا کا انوبندھ سائن کیا۔ اس سمجھوتے کے انترگت سعودی وہابی گٹھ بندھن نے برٹین سے ہتھیار اور پیسہ ملنے کی شرط پر کھیتر میں برٹین کے ورچسواد کو بڑھانے میں مدد دینے کا بھی وچن کیا۔
برٹین اور سعودی وہابی گٹھ بندھن کے بیچ ہونے والے مترتا سمجھوتے سے پوری دنیا کے مسلمانوں میں روش ویاپت ہو گیا۔ عرب کھیتر کے لوگ اس سمجھوتے سے بہت ادھک دکھی ایوم ناراض تھے۔ اسی سمجھوتے کی وجہ سے عثمانی سامراج نے 1891 میں ریاض پر حملہ کیا تھا۔ اس بار پھر سعودی وہابی پریوار کی خبر لی گئی، لیکن اسی بیچ اس پریوار کے کچھ لوگ بھاگ نکلنے میں سفل رہے۔ ان سعودی بھگوڑوں نے برٹین سے سہایتا حاصل کرنے کے لیے کویت میں ڈیرا ڈالا۔ اس سمے کویت برٹین کا اپنویش تھا۔ ادھر برٹین بھی مدھیہ پورو میں اپنے پیر پھیلانا چاہتا تھا، ادھر سعودی وہابی پریوار بھی عرب جگت میں اپنی ستا کے لیے ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ اس سمن میں آگے کیا ہوا، اس کو ہم اگلی کڑی میں پیش کریں گے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، ابھی آپ نے ہمارا کارکرم سنا۔ یہ کارکرم آپ کو کیسا لگا، اس بارے میں اپنی وچار دھارا آپ ہمیں ای میل کے مادھیم سے بھیج سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کی سبھا یہیں پر سمپن ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔